अध्याय 12 देने को कहाना। यह अध्याय लूका 11 आयत 1 से 13 पर आधारित है। मसीह पिता से लगातार संदेश प्राप्त कर रहा था कि वो हमसे वार्तालाप करे। जिस काम के विषय में आप सुनते हैं, उन्होंने कहा, मेरा नहीं है लेकिन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना 14 आयत 24। मनुष्य प्रतिज्ञा करने के लिए नहीं आया अपितु लघुता के लिए आया था। मत्ती 20 आयत 28। खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए उन्होंने सोचा और प्रार्थना की, स्वर्ग के प्रकाश से पुरुषों के लिए। दैनिक उसने पवित्र आत्मा का एक नया बपतिस्मा प्राप्त किया। नए दिन के शुरुआती घंटों में प्रभु ने उसे नींद से जगाया और उसकी आत्मा और उसके होंठ को अनुग्रह से अभिषेक किए गए थे कि वो दूसरों को प्रदान कर सके। उनके शब्दों को स्वर्गीय अदालतों से ताजा किया गया, उन शब्दों को उनके लिए जो थके हुए और उत्पीड़ितों को बोल सकते थे। प्रभु ईश्वर ने मुझे दिया, उन्होंने कहा। प्रभु ने मुझे सीखने वालों के लिए जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। यशाया 50 आयत 4। मसीह के चेले उसकी प्रार्थनाओं और उसकी परमेश्वर के साथ भक्ति की आदत से बहुत प्रभावित थे। अपने ईश्वर से थोड़े से समय की अनुपस्थिति के बाद उन्होंने उसे अपने ध्यान में लीन पाया। उनकी उपस्थिति के बारे में अनाज वो जोर से प्रार्थना करता रहा। शिष्यों का दिल गहरा गया। जब उसने प्रार्थना बंद की तो उन्होंने कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। जवाब में मसीह ने प्रभु की प्रार्थना को दोहराया क्योंकि उसने उसे पहाड़ी उपदेश दे दिया। तब एक दृष्टांत में उन्होंने उन्हें जो पाठ पढ़ाना चाहा उसका उदाहरण दिया। आप में से कौन, उसने कहा, एक दोस्त होगा, आधी रात को उसके पास जाएगा और उससे कहेगा, मित्र मुझे 3 रोटियां उधार दे दे क्योंकि मेरा मित्र यात्रा करके आया और मेरे पास उसके सामने कुछ भी देने के लिए नहीं है। और वो उत्तर देने से रोकेगा और कहेगा, मुझे परेशान मत करो, दरवाजा बंद है और मेरे बच्चे बिस्तर पर मेरे पास लेटे हैं, मैं उठकर तुम्हें नहीं दे सकता हूं। मैं तुमसे कहता हूं, यद्यपि वो नहीं उठेगा और देगा, फिर भी उसके आयात के कारण वो उठेगा और उसे जितने की जरूरत होगी वो देगा। यहां मसीह याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए पूछ रहा है कि वो फिर से दे सकता है। उसे रोटी प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा वो एक थके हुए बेलदार की आवश्यकता की शर्त नहीं कर सकता है। हालांकि उसका पड़ोसी तुच्छ होने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो उसकी बिनती नहीं करेगा। उसके दोस्त को राहत मिलनी चाहिए और आखिर में उसकी आयातशीलता को पुरस्कृत किया जाता है, उसकी आपूर्ति की जाती है। इसी तरह से चेलों को ईश्वर से आशीर्वाद लेना था। भीड़ के भोजन में और स्वर्ग से रोटी पर धर्मोपदेश में मसीह में उनके काम को उनके प्रतिनिधियों के रूप में खोला या उन्हें लोगों की जीवन की रोटी देनी थी। जिसने अपना काम नियुक्त किया था उसने देखा कि उनके विश्वास को कितनी बार आजमाया जाएगा। अक्सर उन्हें अप्रत्याशित स्थिति में फेंक दिया जाता था और उनके मानव अपर्याप्तता का एहसास होता था। आत्माएं जो जीवन की रोटी के लिए त्राही त्राही कर रही थीं, वे उनकी वापसी करेंगे और वे स्वयं को निराश्रित और असहाय महसूस करेंगे। उन्हें अध्यात्मिक भोजन प्राप्त करना चाहिए या उनके पास कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वे एक आत्मा को दूर करने के लिए नहीं थे। मसीह उन्हें आपूर्ति के स्रोत तक पहुंचाता है। जिस आदमी का दोस्त मनोरंजन के लिए उसके पास आया था, आधी रात को बेमौसम धरे में भी उसने उसे नहीं छोड़ा। उसके पास गया जिसने भोजन किया था और उसके अनुरोध को दबाया जब तक पड़ोसी ने उसकी आवश्यकता की आपूर्ति नहीं की। और क्यों ईश्वर जिसने अपने सेवकों को खाना खिलाने के लिए भेजा था अपने काम के लिए उनकी जरूरत की आपूर्ति नहीं करेगा। लेकिन दृष्टांत में स्वार्थी पड़ोसी ईश्वर के चरित्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। पाठ उनके आधार पर नहीं बल्कि इसके विपरीत तैयार किया जाता है। एक स्वार्थी आदमी अपने बाकी को परेशान करने वाले को खुद से छुटकारा दिलाने के लिए तत्काल अनुरोध प्रदान करेगा, लेकिन ईश्वर हमें देने के लिए प्रसन्न है कि हम दूसरों को याजक बना सकते हैं, इस तरह उसके समान बन सकते हैं। मसीह ने घोषणा की कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। हरेक के लिए जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है। उद्धारकर्ता का काम चल रहा है। अगर कोई बेटा आपसे रोटी मांगता है तो क्या वो उसे पत्थर देगा? या वो मछली मांगता है तो क्या वो उसके बदले उसे सर्प देगा? या वो अंडा मांगेगा तो क्या वो उसे वो देगा जो वो मांगता है? यदि तुम दुष्ट होकर अपने बच्चों को अच्छे उपहार देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें कितना पवित्र आत्मा देगे जो उनसे पूछ। परमेश्वर में हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए मसीह उसे एक नए नाम से संबोधित करना सिखाता है, एक नाम जो मानव हृदय के सबसे प्रिय संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है। वह अनंत ईश्वर को हमारे पिता को बुलाने का विशेषाधिकार देता है। यह नाम उसके और उसके संबंध की प्रतिज्ञा है। जब उसका पक्ष या आशीर्वाद मांगा जाता है तो उसके कानों में एक अजीब बात है कि हम शायद इस नाम से उसे पुकारना मुनासिब न समझें। उन्होंने उसे बार बार दोहराया है। वह हमें अपील के साथ परिचित होने की इच्छा रखता है। ईश्वर हमें अपने बच्चों के रूप में मानते हैं। उसने हमें लापरवाह दुनिया से छुटकारा दिलाया है और हमें स्वर्गीय राजा के खिलौने वाले परिवार बेटों और बेटियों का सदस्य बनने के लिए चुना है। वह हमें सांसारिक पिता में एक बच्चे की तुलना में गहरे और मजबूत विश्वास के साथ उस पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित करता है। माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन ईश्वर का प्यार बड़ा, व्यापक, गहरा, मानव प्रेम संभवतः हो सकता है। यह अथाह है। तब यदि सांसारिक माता पिता जानते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे उपहार कैसे दिए जाए, तो स्वर्ग में हमारे पिता को उन लोगों को पवित्र आत्मा कैसे दी जाएगी जो उसे देते हैं और उनका दृष्टांत सिद्धांतों को देखने के लिए लाता है जिन्हें सभी को समझने की आवश्यकता है। वह दिखाता है कि प्रार्थना की सच्ची भावना क्या है। वह शिक्षकों को ईश्वर से हमारे अनुरोधों को पेश करने में दृढ़ता की आवश्यकता बताती है और प्रार्थना सुनने और जवाब देने की उनकी इच्छा का आश्वासन देती है। हमारी प्रार्थना केवल अपने लाभ के लिए स्वार्थी होने के लिए नहीं है। हम यह पूछना चाहते हैं कि हम दे सकते हैं। मसीह के जीवन का सिद्धांत हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। उनके लिए उन्होंने कहा, अपने शिष्यों की बात करते हुए मैं खुद को पवित्र करता हूं कि वे भी पवित्र हो जाए। यूहन्ना 17:19। वही भक्ति, वही आत्मबलिदान, ईश्वर के वचन के दावों के प्रति वही उदासीनता जो मसीह में प्रकट होती है, उसे उसके सेवकों में अवश्य देखा जाना चाहिए। दुनिया हमारा उद्देश्य खुद की सेवा या उन्हें खुश करता नहीं है। हम पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर के साथ सहयोग करके ईश्वर की महिमा करना चाहते हैं। हमें परमेश्वर से आशीर्वाद मांगना है कि हम दूसरों से संवाद कर सकें। प्राप्त करने की क्षमता केवल प्रदान करके संरक्षित है। हम अपने आसपास के लिए संवाद किए बिना स्वर्गीय खजाना प्राप्त करना जारी नहीं रख सकते हैं। दृष्टांत में याचिका कर्ता ने फिर से पुनः वकालत की, लेकिन उसने अपने उद्देश्य को त्याग नहीं दिया। तो हमारी प्रार्थना हमेशा एक तत्काल उत्तर प्राप्त करने के लिए नहीं लगती है, लेकिन मसीह सिखाता है कि हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना चाहिए। प्रार्थना ईश्वर में किसी भी परिवर्तन को काम नहीं है। यह हमें ईश्वर के साथ सद्भाव में लाने के लिए है। जब हम उसका अनुरोध करने हैं तो वह देख सकता है कि हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने हृदय की खोज करें और पाप का प्रायश्चित करें। इसलिए हमें परीक्षण और परीक्षा के माध्यम से ले जाता है। वह हमें अपमान के माध्यम से ले जाता है कि हम देख सकते हैं कि हमारे साथ उसकी पवित्र आत्मा के काम में क्या बाधा है। परमेश्वर के वादों को पूरा करने की शर्तें हैं और प्रार्थना कभी भी कर्तव्य की जगह नहीं ले सकती है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हैं, मसीह कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मानो। उसने कहा कि फिर जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यूहन्ना 14:15-21। जो लोग परमेश्वर के सामने अपनी याचिकाएं लाते हैं, वे अपने वादों का दावा करते हैं, जबकि वे शर्तों का पालन नहीं करते हैं। वे यहोवा का अपमान करते हैं। वे वचन की पूर्ति के लिए उनके अधिकार के रूप में यीशु मसीह को लाते हैं, लेकिन वे उन चीजों को नहीं करते हैं जो मसीह में विश्वास दिखाती है और उनके लिए प्यार करती है। कई लोग पिता के साथ स्वीकृति की शर्त को टाल रहे हैं। हमें विश्वास करना चाहिए कि हम परमेश्वर के पास किस विश्वास के साथ काम करते हैं। यदि हम अवाज्ञाकारी हैं, तो हम ईश्वर को नोट करने के लिए नकद हैं, जब हमने उन शर्तों को पूरा नहीं किया है जो हमारे लिए देय होगी। हम ईश्वर को उनके वादे पेश करते हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए कहते हैं। जब वो ऐसा करता है तो वो अपना नाम बदनाम करेगा। वादा है, यदि तुम मुझ में बने रहें और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहे मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7। और यूहन्ना घोषणा करना है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई कहता है वो उसे जानता है और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं है। लेकिन जो कोई उसके वचन को मानता है, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। 1 यूहन्ना 2:3-5। उनके शिष्यों के लिए अंतिम आज्ञाओं में से एक था, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। 13:34। क्या हम इस आज्ञा का पालन करते हैं, या हम चरित्र के तीखे अनपेक्षित लक्षणों का आनंद लेते हैं? अगर हम किसी भी तरह से दुखी या घायल हुए हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी गलती कबूल करें और सुलह की तलाश करें। ये एक आवश्यक तैयारी है जो हम विश्वास में ईश्वर से पहले आ सकते हैं, उनका आशीर्वाद मांगने के लिए। प्रार्थना में प्रभु की तलाश करने वालों द्वारा अक्सर अपेक्षित किया गया एक और मामला है, क्या आप ईश्वर के प्रति ईमानदार रहे हैं? नबी द्वारा ईश्वर ने घोषणा की, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात से फिरें? क्या मनुष्य ईश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देता है तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशमांश और उठाने की भेंटों में। 3:7-8। हर आशीर्वाद दाता के रूप में ईश्वर हम सभी के एक निश्चित हिस्से का दावा करते हैं। इस सुसमाचार के प्रचार को बनाए रखने का उसका प्रावधान है। परमेश्वर के पास ये वापसी करके हमें उसकी भेंटों की सराहना करनी चाहिए। लेकिन अगर हम उससे पीछे हटते हैं जो उसका अपना है, तो हम उसके आशीर्वाद का दावा कैसे कर सकते हैं? अगर हम सांसारिक चीजों के प्रति बेईमान हैं, हम उनसे स्वर्ग की चीजों को सौंपने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये यहां हो सकता है कि बिना अनुत्तर प्रार्थना के रहस्य है, लेकिन उसकी दया में प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है, और वो कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आऊं कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, क्रैसा करके मुझे परखूं कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसे घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। 3:10-12। तो ये ईश्वर की आवश्यकताओं में से हर एक के साथ है। आज्ञाकारिता की शर्त पर उनके सभी उपहारों का वादा किया जाता है। ईश्वर के पास उन लोगों के लिए आशीर्वाद से भरा स्वर्ग है जो उनके साथ सहयोग करेंगे। जो सभी उसका विश्वास करते हैं, वे अपने वादों को पूरा करने का दावा कर सकते हैं। लेकिन हमें ईश्वर पर एक दृढ़ अटूट विश्वास दिखाना चाहिए। अक्सर वो हमारे विश्वास का जवाब देने के लिए या हमारी इच्छा की वास्तविकता का परीक्षण करने के लिए हमें विश्वास करना चाहिए और हमारी याचिकाओं को एक दृढ़ संकल्प के साथ दबाना चाहिए जिसे अस्वीकार नहीं किया जाएगा। ईश्वर ये नहीं कहता कि एक बार मांगो और आपको मिलेगा। वो चाहता है कि हम उससे प्रार्थना में लगातार मांगते रहने से याचिकाओं और अधिक विनम्र रवैयों में आ जाता है और उसे उन चीजों को प्राप्त करने की इच्छा भर जाती है जिसके वो पूछता है। मसीह ने लाजर की कब्र पर मार्था से कहा, यदि तुम विश्वास करते हो तो तुम्हें ईश्वर की महिमा को देखना चाहिए। यूहन्ना 11:40। लेकिन बहुतों का विश्वास नहीं है। यही कारण है कि ईश्वर की शक्ति को अधिक नहीं देखते हैं। उनकी कमजोरी उनके अविश्वास का परिणाम है। उन्हें स्वयं के काम में अधिक विश्वास है, उनके लिए ईश्वर के काम में है। वे खुद को स्वयं में रखते हैं, वे योजना बनाते हैं और वसीयत करते हैं, लेकिन प्रार्थना कम करते हैं और ईश्वर पर बहुत कम भरोसा करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास विश्वास है, लेकिन क्षण का आवेग है। अपनी स्वयं की आवश्यकता का एहसास करने में या देने की ईश्वर की इच्छा के अनुसार वे प्रभु के सामने अपना अनुरोध रखने में दृढ़ता नहीं करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं उतनी ही ईमानदारी और दृढ़ता के साथ होनी चाहिए जितना उसे होनी चाहिए, जितनी उस जरूरतमंद मित्र की याचिका थी जिसने आधी रात को रोटियां मांगी थी। हम जितना अधिक ईमानदारी और दृढ़ता से पूछेंगे, उतना ही मसीह के साथ हमारा आध्यात्मिक मिलन होगा। हमें बड़ा हुआ आशीर्वाद प्राप्त होगा क्योंकि हमने विश्वास बढ़ाया है। हमारा हिस्सा प्रार्थना और विश्वास करना है। प्रार्थना के लिए देखो और प्रार्थना ईश्वर की सुनवाई के साथ सहयोग करते हैं। ध्यान रखें कि हम ईश्वर के साथ मिलकर मजदूर हैं। यूहन्ना 3:9। अपनी प्रार्थनाओं के अनुरूप बोले और कार्य करें, ये आपके साथ एक अनंत अंतर बना देगा। कि क्या परीक्षण आपके विश्वास को वास्तविक साबित करेगा या ये दिखाएगा कि आपकी प्रार्थना केवल एक रूप है। जब समस्याएं पैदा होती हैं और कठिनाई आपसे टकराती हैं, तो मानवता की मदद के लिए सभी ईश्वर पर भरोसा रखें। दूसरों को हमारी कठिनाइयों को दूर करने का अभ्यास ही हमें कमजोर बनाता है और उनके लिए कोई ताकत नहीं है। ये उन पर हमारी आध्यात्मिक दुर्बलताओं का बोझ डालता है जिन्हें वे दूर नहीं कर सकते। हम अयोग्य अनंत ईश्वर की शक्ति हो सकती है जब हम व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश करते। तुम्हें ज्ञान के लिए पृथ्वी के छोर पर जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर निकट है। ये वो क्षमता नहीं है जो अब आपके पास है या आपके पास कभी होगी जो आपको सफलता दिलाएगी। ये वो है जो प्रभु आपके लिए कर सकता है। हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि मनुष्य क्या कर सकता है और हर विश्वास करने वाली आत्मा के लिए परमेश्वर क्या कर सकता है। वो विश्वास के द्वारा आपके पास पहुंचने की लालसा रखता है। वो आपके पास उनसे महान चीजों की अपेक्षा करना चाहता है। वो आपको लौकिक के साथ साथ आध्यात्मिक मामलों में भी समझने के लिए तरसता है। वो बुद्धि को तेज कर सकता है। वो युक्ति और कौशल दे सकता है। अपनी प्रतिभा को काम में लाए, ईश्वर से ज्ञान मांगे और ये आपको दिया जाएगा। मसीह के वचन को अपने आश्वासन के रूप में ले। क्या उसने आपको अपने पास आने का निमंत्रण नहीं दिया है? कभी भी अपने आप को निराशाजनक, हतोत्साहित तरीके से बात करने की अनुमति न दे। यदि आप करते हैं तो आप बहुत कुछ खो देंगे। उपस्थिति और शिकायत देखकर जब कठिनाइयों और दबाव आते हैं तो आप एक बीमार प्रबुद्ध विश्वास का प्रमाण देते हैं। बात करें और कार्य करें जैसे कि आपका विश्वास अजेय है। प्रभु संसाधनों में समृद्ध है। वो दुनिया का मालिक है। आस्था में स्वर्ग देखो। उसे देखो जिसके पास प्रकाश, शक्ति और दक्षता है।
वास्तविक विश्वास में एक उछाल है, सिद्धांत की एक निरंतरता है और उद्देश्य की एक निश्चितता है कि ना तो समय और ना ही परिश्रम कमजोर हो सकता है। यहां तक कि युवा बेहोश हो जाएंगे और थके हुए होंगे और जवान पूरी तरह से विफल होंगे, लेकिन वे इंतजार करेंगे कि वे प्रभु को अपनी ताकत का नवीनीकरण करें। वे गिद्ध के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और भ्रमित न होंगे, चलेंगे और बेहोश न होंगे। यशाया 40 आयत 30-31। बहुत से ऐसे हैं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति या प्रकाश नहीं है। उन्हें अनुग्रह के सिंहासन पर अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करने दें, पवित्र आत्मा के लिए निवेदन करें। ईश्वर ने अपने किए हर वादे को पूरा किया, आपके हाथों में आपकी बाइबल के साथ, मैंने ऐसा किया है जैसे कि तूने कहा है, मैंने तेरा वादा प्रस्तुत किया, मांगो तो उन्हें तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें न केवल मसीह के नाम में बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करनी चाहिए। यह बताता है कि इसका क्या मतलब जब वो कहा जाता है कि आत्मा हमारे लिए दुख के साथ हस्तक्षेप करती है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है। रोमियो 8 आयत 26। ऐसी प्रार्थना का जवाब देने के लिए ईश्वर प्रसन्न होता है जब निष्ठा और तीव्रता के साथ हम मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। तो ईश्वर से वह तीव्रता आती है जो हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए है, जो हम पूछते हैं या सोचते हैं उससे अधिक है। इफिसियों 3 आयत 20। मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11 आयत 24। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के तहत प्रिय यहुन्ना बड़ी स्पष्टता और आश्वासन के साथ बोलता है। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। यूहन्ना 5 आयत 14-15। फिर यीशु के नाम से पिता के लिए अपनी याचिकाएं बढ़ाईं। ईश्वर उस नाम का सम्मान करेंगे। सिंहासन के बारे में इंद्रधनुषी राउंड एक आश्वासन है कि ईश्वर सत्य है, जो कि उसमें न तो परिवर्तनशीलता है और न ही मोड़ की छाया। हमने उसके खिलाफ पाप किया है और उसके पक्ष में अवांछनीय है। अभी तक उसने खुद को हमारे होठों में डाल दिया है कि सबसे अद्भुत दलील है। महिमा मत करो, याद रखो, हमारे लिए तुम्हारी वाचा नहीं तोड़ना। यिर्मयाह 14 आयत 21। जब हम अपनी अयोग्यता और पाप को स्वीकार करते हुए उसके पास आते हैं, तो उसने अपने आप को हमारे रोने पर ध्यान देने की प्रतिज्ञा की है। उनके सिंहासन का सम्मान हमारे लिए उनके वचन को पूर्ति के लिए है। हारून की तरह, जो मसीह का प्रतीक था, हमारे मुक्तिदाता ने पवित्र स्थान पर अपने सभी लोगों के नाम उनके दिल पर रखूं। हमारे उच्च पुजारी उन सभी शब्दों को याद करते हैं जिनके द्वारा हमें विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया है। वो कभी अपनी वाचा के प्रति सचेत रहता है। उसके चाहने वाले सभी मिल जाएंगे। सभी जो दस्तक देंगे, उनके लिए दरवाजा खोला जाएगा। बहाना नहीं बनाया जाएगा, मुझे परेशानी नहीं है, दरवाजा बंद है, मैं इसे खोलना नहीं चाहता। कभी किसी को नहीं बताया जाएगा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। भूखी आत्माओं को भोजन कराने के लिए, रोटियों के लिए आधी रात को बिस्तर लगाने वाले सफल होंगे। दृष्टांत में वो जो अजनबी के लिए रोटी मांगता है, उसे जितने की आवश्यकता है वो प्राप्त करता है। और किस उपाय में परमेश्वर हमें ये बताएगा कि हम दूसरों को प्रदान कर सकते हैं? मसीह के उपहारों के माप के अनुसार। इफिसियों 4 आयत 7। स्वर्गदूत गहन रुचि के साथ देख रहे हैं कि आदमी अपने साथी पुरुषों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। जब वे एक प्रकार मसीह के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं, तो वे उसकी तरफ दबाते हैं कि आत्मा के लिए जीवन की रोटी होगी। तो परमेश्वर मसीह यीशु द्वारा महिमा के अपने धन के अनुसार अपनी सभी जरूरत की आपूर्ति करेगा। फिलिप्पियों 4 आयत 9।
आपको गवाही इसकी वास्तविकता है कि वो आने वाले जीवन की शक्ति में शक्तिशाली बना देगा। प्रभु का वचन सत्य और धार्मिकता के रूप में आपके मुंह में होगा। दूसरों के लिए व्यक्तिगत प्रयास बहुत गुप्त प्रार्थना से पहले होना चाहिए। इसके लिए आत्माओं को बचाने के विज्ञान को समझने के लिए महान ज्ञान की आवश्यकता होती है। पुरुषों के साथ संवाद करने से पहले मसीह के साथ बातचीत करें। स्वर्गीय अनुग्रह के सिंहासन पर लोगों को राज्य करने की तैयारी मिलती है। अपने दिल को ईश्वर की लालसा के लिए जीवित ईश्वर के लिए जोड़ दो। मसीह के जीवन ने दिखाया है कि मानवता ईश्वरीय प्रकृति का हिस्सा बनकर क्या कर सकती है। वो सब कुछ जो मसीह ने परमेश्वर से प्राप्त किया हमारे पास भी हो सकता है। फिर पूछें और प्राप्त करें। एलिया की अटूट दृढ़ता के साथ, याकूब के दृढ़ विश्वास के साथ, ईश्वर ने जो वादा किया है वो सब अपने अपने लिए दावा करें। ईश्वर की गौरवशाली धारणाओं को अपने मन के पास रहने दें। यीशु के जीवन के लिए छिपे हुए लिंक से अपने जीवन को बनने दो। वो जिसने प्रकाश को अंधेरे से बाहर चमकने की आज्ञा दी, वो आपके हृदय में चमकने को तैयार है। यीशु मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान का प्रकाश देने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातों को लेगा और उन्हें आपको दिखाएगा। उन्हें आज्ञाकारी हृदय में एक जीवित शक्ति के रूप में व्यक्त करेगा। मसीह आपको अनंत की दहलीज तक ले जाएगा। आप घूंघट से परे महिमा देख सकते हैं और उन लोगों की क्षमता को प्रकट कर सकते हैं जो कभी भी अंतकरण बनाने के लिए जीवित रहते हैं।